नमस्कार भारत, तारीख 14 फरवरी दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। एक साल पूरा हुआ केजरीवाल सरकार का, कितना पाया कितना गंवाया।
सरकार ने पूरा एक साल सिर्फ कंट्रोवर्सीज और कन्फ्रंटेशन में पूरा व्यर्थ गया है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपा
करेंगे केजरीवाल के काम का विश्लेषण। पाकिस्तान में हो रही है वैलेंटाइंस डे ना मनाने की अपील। न्यूज मेकर्स में मिलिए उस क्रिकेटर नाथू सिंह से जिसे मुंबई इंडियंस ने खरीदा 3.25 करोड़ में।
जी थे, वो डबल शिफ्ट में ड्यूटी करते थे, वो वायर फैक्ट्री में वर्कर है, 16-16 घंटे ड्यूटी करते थे और जो भी पैसा आता था वो मेरे पे खर्च करते थे।
चलिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जहां चढ़ा है वसंत का रंग, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी कैबिनेट आज इस मौके पर जनता के सवालों का जवाब देगी। सरकार की उपलब्धियों के बारे में एक पुस्तिका जारी की जाएगी। उधर दिल्ली कांग्रेस ने रविवार को छलावा दिवस मनाने का फैसला लिया है। उसका कहना है कि वो केजरीवाल सरकार की नाकामियाँ उजागर करेंगे। पोप फ्रांसिस ने मैक्सिको के राजनीतिक लोगों और चर्च नेताओं से अपील की है कि वो जनता को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करें। मैक्सिको के अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी और उससे जुड़ी हिंसा एक कैंसर है जो मैक्सिको के समाज को बर्बाद कर रही है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने रूस को सीरिया में अपनी बम्बारी की नीति बदलने को कहा है ताकि वहाँ युद्ध खत्म किया जा सके। म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दुनिया के नेताओं से कहा कि रूसी फौजें खासकर सीरियाई नागरिकों पर बम बरसा रही हैं। उनका कहना था कि इससे सीरियाई विद्रोहियों पर काबू तो पाया जा सकता है, पर वो समर्पण नहीं करेंगे। कैरी ने कहा कि सीरिया में शांति की कोशिशें संकट में हैं।
Whether one side or another has an advantage today,
फिलहाल चाहे एक पक्ष को फायदा हो या दूसरे को, इस संघर्ष का कभी न कभी कोई राजनीतिक समाधान खोजना ही होगा ताकि शांति कायम हो सके, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और यही वो क्षण है। आने वाले दिनों और हफ्तों में किए गए फैसले सीरिया में युद्ध को रोक सकते हैं या फिर भविष्य के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां मैक इहू ने चेतावनी दी है कि लीबिया में तुरंत एक सरकार खड़ी करने की ज़रूरत है जहां इस्लामिक स्टेट संगठन तेज़ी से अपना विस्तार कर रहा है। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान इहू ने कहा कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में सरकार की मौजूदगी लीबियाई लोगों के हित में है और जो इसका विरोध करेंगे उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमरीका ने तुर्की से कहा है कि वो उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द हथियारबंद गुटों पर हमले बंद करे। विदेश विभाग ने सीरियाई कुर्दिश ताकतों और उनके सहयोगियों से अपील की कि वो नए इलाकों पर कब्जा न करें क्योंकि इससे भ्रम के हालात पैदा हो रहे हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक तुर्की और सीरियाई कुर्दों को इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से निपटने पर ध्यान लगाना चाहिए। ब्राज़ील की राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ ने जोर दिया है कि जीका वायरस के तेजी से फैलाव का अगस्त में रियो डी जेनेरो में होने वाले ओलंपिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूसेफ ने कहा कि बीमारी से बचाव और टीके की तलाश का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वायरस के लिए जिम्मेदार मच्छर को खत्म करने में कामयाबी मिल रही है। युगांडा की राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने गुरुवार को के राष्ट्रपति चुनाव से पहले टेलीविजन बहस में अपने कार्यकाल को कामयाब बताया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से। आज से ठीक एक साल पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। एक साल पूरा होने के मौके पर सरकार अपने कामकाज का बखान करने की तैयारी में है तो विपक्ष ने सरकार की कमजोरियों को सामने लाने का इरादा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में काला दिवस मनाने की तैयारी में है तो कांग्रेस ने इसे छलावा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। सुशीला सिंह की रिपोर्ट।
मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति।
ठीक एक साल पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। साल भर के कामकाज पर गौर करने के लिए केजरीवाल सरकार ने आज एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कैबिनेट की ओपन मीटिंग करने का फैसला किया है। इसमें मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी बात रखेंगे और जनता की राय और शिकायतों पर गौर करेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली सरकार का पहला साल बेमिसाल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे कहते हैं,
दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे जनहित के प्रयासों और कामों से बेहद संतुष्ट है। दिल्ली की सरकार को अपना फोकस हमेशा की तरह जनहित के कामों पर बना के रखना है। ये पहला साल जो बीता है वो बेमिसाल बीता है। आने वाले 4 साल भी जनता के होंगे, आम आदमी के होंगे, बेमिसाल।
आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार की तारीफ में जुटी है तो विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने एक साल में कुछ किया ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कल केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और आज पार्टी काला दिवस मनाकर सरकार की खामियां उजागर करने के इरादे में है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता कहते हैं,
सरकार ने पूरा एक साल सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज और कन्फ्रंटेशन में पूरा व्यर्थ गया है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती रही, बाकी एजेंसी से झगड़ा करती रही और संविधान का उल्लंघन करती रही। डेवलपमेंट की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं था। रिपोर्ट कार्ड में नंबर का विषय तो जब आता है, जब आंसर शीट पे कुछ लिखा होता। आपने एक साल में उसके लिए कुछ नहीं किया। हम एक काले दिवस के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के सामने सरकार को बेपर्दा कर रहे हैं।
कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार के एक साल के कामकाज को लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ छल किया है और आज कांग्रेस छलावा दिवस मनाएगी। कांग्रेस नेता अजय माकन,
एक वर्ष के केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने तैयार करी है और जाहिर बात है जैसे दिल्ली की सब जनता मानती है कि रिपोर्ट कार्ड में ये 100 में से 0 रहे।
आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के वार पर पलटवार किया है। पार्टी नेता दिलीप पांडे कहते हैं कि विरोध कार्यक्रमों के जरिए विपक्ष खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश में है।
ये 2-4-5 लोग कमरे में बैठ के किसी लोकप्रिय ऐतिहासिक सरकार को शून्य देते हैं जो खुद शून्य पर सिमट गए हैं। ये आर्यभट्टीय परिकल्पनाओं से बाहर निकलने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं।
दिलीप पांडे का कहना है कि आम आदमी पार्टी को जनता पर भरोसा है और जनता ही सरकार के कामकाज को लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकती है।
तो कैसा रहा दिल्ली सरकार का एक साल का कामकाज? विश्लेषण के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी से बात की और पूछा कितना अच्छा या फिर कितना बुरा रहा अरविंद केजरीवाल सरकार का एक साल।
मेरा मानना यह है कि एक नई पार्टी और बगैर तजुर्बे की पार्टी, उनकी इस बारे में तारीफ की जानी चाहिए। उनका कई मामलों में ये कह सकते हैं कि कमियां रही, कई चीजें ऐसी हैं जो अभी नहीं कर सके, लेकिन एक जो संदेश होता है वो संदेश कुल मिलाकर के ये गया कि ये सरकार जो है वो कुछ करना चाहती है, कुछ कर रही है और कुछ करके दिखा सकती है। 2-4 और बातें मैं आपको बता दूं जो मैं मानता हूं कि सरकार के बारे में। एक तो जैसे पानी बिजली वाला मामला है, मैं ये मानता हूं कि काफी कुछ चीजें उसमें सुधार हुआ है। उसका पर्यावरण को लेकर के जो सरोकार इन्होंने जताया है वो भी, सारी दुनिया जब जागरूक है तो उस वक्त आप इसकी परवाह नहीं करते हैं कि दिल्ली प्रदूषित रहे, और इन्होंने यातायात को लेकर के जो प्रयोग किए हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, सफल हैं, विफल हैं, लेकिन एक जागरूकता उसको लेकर नजर आती है। और प्रशासन की चुस्ती और सादगी वो भी एक बड़ी बात है कि प्रशासन हमेशा एक दूर की कौड़ी रहे और जो मंत्री हैं और लोग हैं, अफसर हैं, बहुत दूर रहे। लालबत्ती की जगमगाहट और जो घंटियां बज रही हैं उनको भी इन्होंने जो है वो बेहतर किया है, लेकिन इनकी कमियां भी हैं। और सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जो इनका जन लोकपाल जो था वो लोकपाल कहाँ गया।
एक साल के दौरान ही कम से कम 2 ऐसे विवाद रहे जो इस पार्टी की छवि पे नुकसान पहुंचाया। एक तो पार्टी के जो संस्थापक सदस्य बड़े लोगों को, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखाया पार्टी ने, और अपने ही 2 मंत्रियों पे कार्रवाई करनी पड़ गई इनको। एक राजनीतिक पार्टी के लिए इसको किस रूप में देखते हैं?
देखिए, मंत्रियों पर कार्रवाई जो की गई मैं मानता हूँ कि वो तो एक अच्छी बात ही थी। अगर कोई इतने सारे लोग, मतलब 67 लोग लेकर के आप सत्ता में आए और आपने मंत्री बनाए उनमें जो भी, और अगर मान लीजिए मंत्री स्तर पे किसी व्यक्ति कोई आप पे लांछन लगा, लेकिन उस व्यक्ति को लेकर शुरू में जरूर मैं ये मानता हूँ कि इनको साफ साफ जो है ये सोचना चाहिए था कि अगर कोई जांच हो रही है तो उस जांच में, उस वक्त ये एक तरह से बचाव की मुद्रा में थे, वहां तक तो इनकी भूल थी। लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल में इन्होंने उसका बचाव नहीं किया। पर दूसरे मंत्री के बारे में तो उन्होंने खुद ही कार्रवाई की। सरकार का जो संदेश गया है वो है कि भ्रष्टाचार जो है वो इनका काम नहीं है, और भ्रष्टाचार के बारे में आम लोगों की राय भी अगर आप देखेंगे किसी तरह से कोई सर्वे वगैरह करवा के, तो आप पाएंगे कि लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। और योगेंद्र की बात आपने की, प्रशांत भूषण, यानी ये जो इनकी पूंजी हुआ करते थे तो उनको हटा करके, और एक तानाशाही कहना चाहिए तो केजरीवाल के स्वभाव में वो शुरू से है, टीवी नजर नहीं आती है सिवाय मनीष के, केजरीवाल के बड़े नेता नजर नहीं आते।
इन एक साल में सर आप क्या मानते हैं कि राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी की तरह केजरीवाल अब व्यवहार करने लग गए हैं या उसको सीख रहे हैं अभी?
नहीं, मेरा मानना है कि वो कई सीखे हुए लोगों को सबक सिखा रहे हैं, इस मामले में तो अब उनको आप सीखने वाला नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने केंद्र के साथ में जो तकरार, जो मैं मानता हूँ कि दिल्ली और दिल्ली के एक साल को आप देखें तो इस बात को जरूर देखना चाहिए, वो पार्टियां जो बरसों से कहती थी कि दिल्ली को स्वायत्त होना चाहिए, दिल्ली की सरकार को, और सत्ता में रहने के बाद उनमें ने कांग्रेस जो है उसकी बात करती है, और जो वादा करके केंद्र में भाजपा आई न वो इस मामले में कोई पहल करती है।
अरविंद केजरीवाल सरकार के एक साल के कामकाज का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड, यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आज 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे को इस्लाम विरोधी बताते हुए इसे न मनाने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी लोगों से कहा है कि वो वैलेंटाइंस डे न मनाएं क्योंकि ये इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है। इस तरह खबरें भी सामने आईं कि पाकिस्तान के गृहमंत्री निसार अली खान ने भी प्रशासन को हिदायत दी कि वो इस दिन के कार्यक्रमों पर रोक लगाएं। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस्लामाबाद में मौजूद उर्दू सेवा के संवाददाता अब्दुल्ला फारूकी से बात की और पूछा कि ये पूरा मामला क्या है।
अच्छा, मैं पहले तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं। हमारे सदर जो है ममनून हुसैन, उन्होंने ये जो बात की थी वो पाकिस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसके एक अहम रहनुमा थे सरदार अब्दुल रब निश्तर, और जुमे के रोज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि वैलेंटाइंस डे का हमारी सकाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उन्होंने एज सच पाबंदी का मुतालबा नहीं किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बात की है लिहाजा जो विफाक है पाकिस्तान का उसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस ने उसको अपने लिए अहकाम के तौर पर ले लिया है और थोड़ा सा इसके ऊपर अमल दरामद कराने की कोशिश की है। इससे पहले पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उसमें सबसे पहले कोहाट जिले में एक तकरीब थी और उसमें पाबंदी लगाई गई थी कि कोहाट के अंदर वैलेंटाइंस डे नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद पूरे सूबे की हुकूमत ने पेशावर में कहा कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनाया जाएगा। ये वो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे कहा जाता है कि तालिबान का कुछ कहीं कहीं कुछ पैकेट्स के अंदर थोड़ा बहुत असर रसूख है या हिमायत है, या आप यूं कहें कि कंजर्वेटिव इलाके हैं। उन्होंने, वहाँ की हुकूमत ने इसके वैलेंटाइंस डे के दिन कहीं कोई गुस्से में आके कोई हमला ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो उस चीज़ को थोड़ा सा माहौल को डायल्यूट करने के लिए उन इलाकों में पाबंदी लगा दी है। चौधरी निसार अली खान का बयान सामने नहीं आया, लेकिन हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि दुकानों पे उस तरीके से चीजें और अशिया नहीं बिक रही हैं वैलेंटाइंस डे के हवाले से जो हर साल होती हैं।
लेकिन अगर सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बात की जाए, खासतौर पर राष्ट्रपति का बयान आने के बाद, तो लोग असमंजस में है कि राष्ट्रपति आखिर ऐसे मुद्दों पर क्यों अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और इन मुद्दों पर क्यों बोल रहे हैं आखिर।
जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी और एक दो फंक्शंस हुए उनमें भी लोगों के मिले जुले थे। आपको पता है यहाँ पे जो राइटिस्ट हैं वो उसको खुश हैं इससे कि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया और कहीं ना कहीं असरअंदाज हुए और वो अपने अपने पैकेट्स में असरअंदाज हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं कि बाहर निकलें वैलेंटाइंस डे के दिन। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो इसके हक में, और वो कहते हैं जिस तरह मदर्स डे है, जिस तरह फादर्स डे है, जिस तरह कैंसर का आलमी दिन है, उसी तरीके से एक मोहब्बत का आलमी दिन है। तो खास तौर पे नौजवानों में थोड़ा सा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का कोई ऐसा ओहदा नहीं है कि वो आके इस किस्म के मामलात में, आलमी दिनों के मामलात में आके अपनी राय दें।
पाकिस्तान में शायद ये पहला मौका है जब वैलेंटाइन डे को लेकर इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, या पहले भी ऐसा होता रहा है वहाँ?
नहीं, पहले भी होता रहा है। मैंने आपसे कहा कि जो राइटिस्ट कुछ मूवमेंट्स हैं, कुछ मजहबी गुरोह हैं, कुछ तंजीमें हैं, वो हमेशा से इसकी हौसला अफजाई नहीं करती हैं, बल्कि हमेशा से वो वैलेंटाइंस डे के दिन मुख्तलिफ स्पीचेस वगैरह या मुख्तलिफ जगहों पे बैनर्स पोस्टर्स लगाते हैं कि इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है।
तो कुल मिलाकर लोग किस मूड में हैं?
लोग आज भी मैं देख रहा हूँ खवातीन मर्द रेड शर्ट्स के अंदर या रेड कपड़ों के अंदर हैं, लोग गाने भी बजा रहे हैं, लोग निकले हुए भी हैं, कैफेज वगैरह में भी अच्छा खासा रश है। जो मना रहा है वो मना रहा है, ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी को पकड़ के अंदर कर रही है, लेकिन जिसने जोश व खरोश से पहले आज से 10 साल पहले मनाया जाता था, यकीनन उतना जोश व खरोश नहीं।
पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे को इस्लाम विरोधी बताते हुए इसे न मनाने की अपील की जा रही है। जानकारी दे रहे थे बीबीसी उर्दू संवाददाता अब्दुल्ला फारिकी। अजय शर्मा मौजूद हैं। अजय शर्मा, अखबार भी आप हिंदुस्तान के पढ़ चुके हैं, ये बताइए कि वैलेंटाइंस डे को लेकर हमेशा विरोध होता है, पाकिस्तान का जिक्र हमने कर लिया, हिंदुस्तान में क्या कुछ अखबार इस बारे में कह रहे हैं?
जी जी, इसमें इस बार जो है कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें हैं कि एक अभियान चला है वैलेंटाइंस डे पर और तुगलकी फरमानों का, जिसमें कि मेट्रो स्टेशनों पर कुछ विज्ञापन लगाए गए जिसमें कि इसको वैलेंटाइंस डे को मातृ दिवस के रूप में मनाने की सलाह दी गई है। और ये जो संगठन जो है जिसने लगाया है वो आसाराम बापू जो है उनसे जुड़े हुए हैं।
हाँ, मैंने भी मेट्रो में देखे हैं इस तरह के विज्ञापन जिसमें कि आसाराम बापू की तस्वीर है और वो कह रहे हैं कि मातृ और पितृ दिवस है ये।
जी,
इसके अलावा और बड़ी खबरें कौन सी हैं?
इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो है जेएनयू जो है वो सियासी अखाड़ा बना, इस तरह की हेडिंग के साथ कई अखबारों ने इस खबर को जो है अपने पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसमें हिंदुस्तान ने लगाया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कई विपक्षी नेता जो है छात्रों के समर्थन में विश्वविद्यालय गए, और जबकि केंद्र ने ये कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें राजनाथ सिंह जो है उनका बयान इसमें छापा गया है कि, और रात भर पुलिस की छापेमारी भी यूनिवर्सिटी में चलती रही है। इसी सिलसिले में नवभारत टाइम्स मेरे सामने है, जिसने दो अलग अलग बॉक्स लगाए हैं और उसमें एक में लिखा है कि संसद तक इस मामले की गूंज गई है, जिसमें कि संसद का जो बजट सेशन जो भी कुछ दिनों में शुरू होना है वो उसको उसमें भी इस मामले का उठने के आसार हैं।
और कल सीताराम येचुरी का जब हम इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि इस मामले को हम संसद में भी ले जाएंगे।
जी, और इसी के साथ जो है पुलिस ने जो है वाइस चांसलर है उनसे उन 5 छात्रों के बारे में और जानकारी मांगी है, उनके पते ठिकाने मांगे हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है देशद्रोह का, जो इनके छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ जिन पर आरोप लगे थे। राहुल गांधी की तस्वीरें भी लगी हुई हैं
जी।
और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण खबर है वो है पाकिस्तान को F-16 देने पर भारत का एतराज।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा, नमस्कार भारत। असल जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कि सपनों पर यकीन करना सिखाती हैं। राजस्थान के 20 साल के क्रिकेटर नाथू सिंह की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के नाथू सिंह ने 2015 में रणजी डेब्यू किया। अभी उन्होंने चंद फर्स्ट क्लास मैच ही खेले हैं। कुछ रोज पहले हुई आईपीएल के खिलाड़ियों की नीलामी में उन्हें मुंबई इंडियंस ने 3,20,00,000 रुपए में खरीदा, जहां मार्टिन गुप्टिल और हाशिम अमला जैसे खिलाड़ियों का कोई खरीदार नहीं था, वहीं नाथू सिंह का ये आगाज क्रिकेट के मैदान में उनके हुनर पर बढ़ते भरोसे का संकेत है। आज बीबीसी न्यूज मेकर्स में नाथू सिंह से बातचीत स्वाति बख्शी के साथ।
सबसे पहले तो नाथू, बहुत बहुत बधाई आपको, मुंबई इंडियंस ने आपको अपनी टीम में ऊंची कीमत पर लिया और दिल्ली और पुणे की भी आप पर नजर थी।
काफी अच्छा लग रहा है और बस थोड़ा सा नर्वसनेस ही होती है।
तो ये जो पैसा आपको मिला है इतना सारा, इसका आप क्या करेंगे ये सोचा है आपने?
जो मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए किया है, मैं उनका मतलब उनके लिए भी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और जो मेरा घर है वो उसको मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ, और मैं अपने मॉम डैड को एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि वो लोग उसमें अच्छे से रहे। मैं उन्हें दुनिया का हर सुख देना चाहता हूँ।
जाहिर है कि आप पर बहुत सारी निगाहें अब हैं। क्रिकेट का ये जो शौक था, ये आपको कहाँ से लगा? आपने कहाँ से खेलना शुरू किया, किस उम्र से खेलना शुरू किया, जरा अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं।
जब छोटा था तो मैच वगैरह देखता था इंडिया के, और मेरे को इंडिया के मैच देखने के लिए मैं रात भर जगता था जब तक वो मैच खत्म नहीं होता था, और तब से मेरे को देखने से मेरे को इसका शौक लगा। क्रिकेट स्टार्ट किया तो मैंने टेनिस बॉल से खेलना शुरू किया।
अच्छा।
और मैं आज भी टेनिस बॉल से खेलता हूँ। जब भी मेरी कभी बॉलिंग खराब होता है तो मैं टेनिस बॉल से ही प्रैक्टिस करता हूँ, उससे मेरे टेनिस बॉल से मेरा पेस भी बढ़ता है, और टेनिस बॉल से मैं मेरा जो मेरे को लेंथ और एरिया जो भी डालना होता है वो वहाँ पे मेरे को डाल पाता हूँ मैं।
पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं रखते थे या पढ़ाई के साथ आपने खेला, किस तरह से हुआ ये?
पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी मेरे अंदर, मैं सिर्फ ओनली क्रिकेट खेलने में ध्यान देता था पूरा।
तो आपके मम्मी पापा ने आपके साथ ये नहीं किया, इस तरह का प्रेशर नहीं डाला कि पढ़ो खेलो मत?
काफी डाला, पर बाद में जब जैसे मैंने 12th पास आउट हुआ, मैं उनको मेरे मामोसा वगैरह ने समझाया, तब जाके वो मतलब कि उन्होंने मेरे को अलाउड किया क्रिकेट खेलना लेदर बॉल से।
तो पापा को लगता था कि नहीं खेलना चाहिए या मम्मी को?
दोनों मना करते थे मेरे को खेलने के लिए, दोनों बहुत डांटते थे।
क्रिकेट या कोई भी ऐसा खेल, ये ऐसा नहीं है कि बिना किसी ट्रेनिंग के इसमें आगे बढ़ा जा सके, और आपके घर की जो आर्थिक स्थिति नहीं थी ऐसी, आपके लिए कुल मिलाकर अब तक का सफर कितना मुश्किल रहा?
मेरा जो भी सफर है बहुत मुश्किल रहा, मेरे को ट्रेनिंग वगैरह की सुविधा नहीं मिल पाती थी, और मेरे घर से एकेडमी 15 किलोमीटर पड़ती थी, और मैं रोज मॉर्निंग में 5 बजे उठ के और प्रैक्टिस करने के लिए साइकिल से रोज एकेडमी जाता था सुबह मॉर्निंग में, चाहे विंटर हो चाहे समर हो।
जब आपका ये फैसला हुआ कि आप क्रिकेट एकेडमी जाएंगे, तो आपके माता पिता का रिएक्शन क्या रहा, उनको कैसे लगा कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे?
शुरू के अंदर तो उन्हें काफी परेशानी होती थी, वो लोग मेरे इंटरेस्ट पे पैसा लाके और मेरे जो एकेडमी वगैरह में जमा कराते थे, और उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया था कि तेरे को मैं हम लोग सिर्फ 5 या 6 महीने के लिए पैसा जमा करा सकते हैं, हम लोग इससे ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं है। 5-6 महीने के अंदर मैं मतलब राजस्थान की टीम के अंदर आ गया था, और फिर जब मैं उन्हें वो पैसा वापस लाके दिया तो उन लोग वो लोग बोले कि चल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू अपने अब जो भी कुछ करना है तेरे को अपने दम पे करना है, देख हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो भी पैसा है। तो मैम जो कुछ भी करता था मैं सिर्फ अपने उसके लिए अपने ऊपर ही करता था, मैं मैचेस वगैरह खेलता था और मैं बाहर भी मैचेस वगैरह काफी खेलता था जहां से मुझे पैसे वगैरह मिलते थे। मम्मी पापा ने बहुत पैसा लगाया मैम मेरे ऊपर।
तो आपके पिता ने आखिर ये किया कैसे, और आपकी माँ ने भी क्या इसमें आपका खर्च उठाने के लिए कुछ किया, उन्होंने काम करने की ठानी या किस तरह से किया उन दोनों ने मिलकर?
पिताजी थे वो डबल शिफ्ट में ड्यूटी करते थे, वो वायर फैक्ट्री में वर्कर है, और वो मेरे लिए मैम 16-16 घंटे ड्यूटी करते थे और जो भी पैसा आता था वो मेरे पे खर्च करते थे।
कभी वो मौका आपके अपने जहन में आया जब आपको लगा हो कि मुझे ये क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और कुछ और काम करना चाहिए, शायद ये नहीं हो सकता?
नहीं मैम, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि मैं जब राजस्थान टीम में खेलने लगा तो मेरे पिताजी ने मेरे को कभी ऐसे नहीं बोला कि तू क्रिकेट छोड़ दे, बस मैं क्रिकेट पे ध्यान देता था और मैम कहीं ध्यान नहीं दे पाता था मैं।
तो क्रिकेट में जो इतने करप्शन की बात होती है, इतने भ्रष्टाचार की बात होती है, आपको कैसे ये भरोसा था कि आपको जगह मिलेगी जबकि आपको तो जयपुर में भी खेलने का मौका नहीं मिला?
मैं भी सुनता हूँ कि करप्शन वगैरह काफी है क्रिकेट में, लेकिन मैं नहीं मानता कि करप्शन वगैरह काफी है क्रिकेट में। कई लोग इतने अच्छे इंसान है जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता। एनसी अकेडमी में मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे तो मेरे को एक सर थे हमारे जो कोच थे फील्डिंग कोच, अपना जो डीए था वो उन्होंने मेरे को दिया था 10,000 रुपीज। मैम एहसान मंद रहूंगा मैम, चाहे मैं कितना भी बड़ा क्रिकेटर बन जाऊं।
आप शोएब अख्तर के बड़े फैन हैं?
जी मैम, मैं शोएब अख्तर का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं उनसे भी तेज बॉलिंग करना चाहता हूं। वो भी कहते हैं कि बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो वो बैट्समैन को मारने को देखते हैं, और मैं भी जब बैट्समैन बैटिंग करता है उसे मारने को देखता हूं। मैं उसे आउट करने का नहीं देखता, उसे मारने का देखता हूं मैं भी। अगर कोई बैट्समैन उन्हें बाउंड्री मारता है तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वही सीन मेरे साथ है।
शोहरत और पैसा जो होता है वो दिमाग खराब करने के लिए बहुत होता है नाथू, और खासतौर से तब जब वो कम उम्र में आ जाए आपके पास, तो रास्ते से भटकने के कितने चांस है?
मेरे लिए तो 0% चांस है, नील बिल्कुल।
क्यों?
क्योंकि मैं पैसे को कुछ समझता नहीं हूँ मैम, मैं ओनली सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देता हूँ, सिर्फ मेरे को टारगेट है हिंदुस्तान खेलना है, हिंदुस्तान खेलना है सिर्फ।
आईपीएल में 3,20,00,000 में बिकने वाले खिलाड़ी नाथू सिंह से बात कर रही थी हमारी सहयोगी स्वाति बख्शी। दिल्ली में इन दिनों वसंत ऋतु का रंग चढ़ा है, ऐसा ही एक रंग दिखा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में। हजरत अमीर खुसरो और वसंत का रंग एक हुए इस दरगाह में। हर साल की तरह इस बार वसंत ऋतु सूफी तरीके से मनी, जहां छाया पीला रंग और कव्वाली का समा। गंगा जमुनी तहजीब यहां नजर आई। इंदु पांडे यहां मौजूद थी।
दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मजार पर छाया बसंत का रंग, और दूर दूर से लोग यहां पे उस रंग को देखने आए।
मैं ज्ञानेंद्र, चंद दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि बसंत पंचमी के दिन यहां पर कव्वाली का प्रोग्राम होगा, लेकिन आज ये अपने आप में एक अलग तरह का ये फंक्शन मुझे लगा कि बसंत पंचमी के दिन सिर्फ बसंत के ऊपर कव्वालियाँ होंगी, कौल होंगे, कलाम होंगे, बहुत ही अच्छा लगा।
और इस अच्छे की शुरुआत हुई 12वीं शताब्दी से ही।
मेरा नाम है ख्वाजा अफजाल निज़ामी सज्जादा नशीन ख्वाहजादा यज्ञत दीवारी। 700 साल पहले हजरत निज़ामुद्दीन की बहन के लड़के की डेथ हो गई थी, तो आप खानकाह में बंद हो गए थे, किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन आज के दिन हिंदू भाई कालका जी अपनी बसंत मनाने जा रहे थे, रास्ते में हज़रत ख्वाजा सैयद अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह मिले और पूछा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम अपने पिया को मनाने जा रहे हैं और बसंत चढ़ाने जा रहे हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो ने उनका लिबास पहन लिया और ढोला गले में डालकर बाबा निज़ामुद्दीन के खानकाह में वहाँ आए, ज़ोर से ढोल बजाने लगे, आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले,
आज बसंत मना ले सुहागन।
और तभी तो भारत में सूफियों की परंपरा को हिंदू समाज से ज्यादा अलग करके देखा नहीं जा सकता। इस पर्व को देखने आए कौशल किशोर का कहना है,
मैं इस लिगाज से देख रहा था कि 1270-80 में वो लिख रहे होंगे और उस समय यहाँ की बोली क्या रही होगी। उनके जो आज मैं गीत सुना उसमें कोई भी फारसी का एक भी लफ्ज नहीं था या हिंदी सहसवावस्था का गीत था वो।
किसी ने यहाँ पे इतिहास को ढूंढा तो किसी ने अपनी तमन्ना पूरी की।
मेरा नाम तमन्ना है।
तमन्ना पूरी होगी आपकी जिसलिए आई थी?
और क्या पूरी होगी, और क्या उन्होंने बुला लिया अपने दर पे।
ख्वाजा के दरबार में सब एक समान है और वहीं पे हमारी मुलाकात हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश उपाध्याय से।
निजामुद्दीन दरगाह में है, ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी संस्कृति कितनी प्रगाढ़ है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। हम मिलकर के इस वसंत उत्सव को मना रहे हैं, वही हमको सब देशों से अलग बनाती है। फूलों की खुशबू, हमारी पुरातन परंपराएं हैं, उनको अगर ईमानदारी से देखें तो मुझे लगता है कि देश बहुत तरक्की कर सकता है।
और यहाँ पे आई पहली बार आरती जिनका अनुभव बताता है,
बस ऐसे लगा कि आना चाहिए।
और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था कि बस यूं लगा कि सकल बन फूल रही सरसों। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला में बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ कराने को लेकर के अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में धूमधाम से बसंत मनाई गई। हिंदू पांडे, बीबीसी दिल्ली।
और अब कार्यक्रम में उन खबरों की बात जिन पर आज रहेगी हमारी नजर।
नेशनल हेराल्ड मामले में आज एक सदस्यीय समिति अपनी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। ये जांच रिपोर्ट नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL को जमीन के स्थानांतरण में हुई गड़बड़ियों से जुड़ी है। AJL अभी जमीन पर एक इमारत बना रही है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के करीब है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 14 फरवरी को राज्य का पर्यटन दिवस मनाने का फैसला लिया है। पहला टूरिज्म डे आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ में मनाया जा रहा है। म्यूनिख में सीरिया संकट को लेकर चल रही 52वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आज खत्म हो रही है। इसमें शरणार्थी संकट, सीरिया में युद्ध और यूरोपियन यूनियन की ओर से सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 600 सुरक्षा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने आज केंद्रीय अफ्रीकन रिपब्लिक में होने वाले चुनावों से पहले शांति बनाए रखने की अपील की है। केंद्रीय अफ्रीकन रिपब्लिक में 2013 के तख्तापलट के बाद से ही मुस्लिम और ईसाई संगठनों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।
तो इन खबरों पर आज हमारी रहेगी नजर। अगले कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कि खेल जगत में क्या कुछ हुआ। इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने सीरिया पर बमबारी की नीति बदलने से इनकार कर दिया है। इससे पहले ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस ने रूस पर आरोप लगाया था कि वो सीरिया के नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा है। मेदवेदेव ने जोर देकर कहा कि इसके लिए कोई सबूत नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। दिल्ली कांग्रेस ने इस दिन को छलावा दिवस मनाने का फैसला लिया है। पोप फ्रांसिस ने मैक्सिको के राजनीतिक लोगों और चर्च नेताओं से अपील की है कि वो जनता को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करें। फ्रांस के विदेश मंत्री जियां मैक इहू ने चेतावनी दी है कि लीबिया में तुरंत एक सरकार खड़ी करने की ज़रूरत है, जहां इस्लामिक स्टेट संगठन तेज़ी से अपना विस्तार कर रहा है। अमरीका ने तुर्की से कहा कि वो उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द हथियारबंद गुटों पर हमले बंद करें। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।